अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम प्रेमावतार श्री सत्य साई। यहाँ आज के प्रसंग में हम सुनेंगे स्वामी के बचपन की कुछ घटनाओं का वृत्तांत, जैसे स्वामी का बुक्कापट्टनम से कमलापुर के स्कूल में पढ़ने जाना और फिर अपने बड़े भाई साहब के परिवार के साथ आगे की पढ़ाई के लिए उर्वकोंडा आ जाना, तथा स्वामी के कमलापुर से पुष्पगिरी मेले में जाने वाली घटना का वर्णन इत्यादि।
अध्याय 4 गान लोल। धर्मनिष्ठ राजू वंश के सत्यनारायण के भाई शेषम राजू का विवाह कड़प्पा जिले के कमलापुर ग्राम के पशुपति सुब्बा राजू की सुपुत्री से संपन्न हुआ। बुक्कापट्टनम में अंग्रेजी भाषा की तीसरी कक्षा तक ही शिक्षा की सुविधा थी। प्रतिभाशाली सत्या को किसी भी प्रकार उच्च शिक्षा दिलाकर, डिग्रीधारी बनाकर बड़ी सरकारी नौकरी दिलाने की कामना उसके माता पिता ने की थी। इस कारण शेषम राजू ने अपने ससुराल वालों के आश्रय में सत्या को छोड़कर स्वयं पंडित की परीक्षा की तैयारी के लिए अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। उस स्कूल में नित्य पाठ्यक्रम आरंभ होने के पूर्व विद्यार्थी तथा शिक्षक गण मिलकर ईश वंदना किया करते थे। शाला में प्रवेश के कुछ समय पश्चात ही एक दिन सत्या ने मंच पर खड़े होकर अपने मधुर एवं भावपूर्ण गायन से संपूर्ण सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। रोमांचित हो बहुतों ने हर्ष के आंसू बहाए। वातावरण शांत एवं पवित्र हो उठा। उस दिन से वह स्थान सत्या के लिए सुरक्षित हो गया। केवल शाला में ही नहीं, वरन गांव के प्रत्येक समारंभ में रंगमंच पर सर्वप्रथम प्रवेश का अधिकार सत्या का ही हो गया। जब तक उसके गीत का श्रवण ना हो जाए, सभा शांत नहीं होती। उस शाला में एक ड्रिल मास्टर थे। बाबा आज भी उन्हें अत्यंत प्रेम से याद करते हैं। उन्हें बच्चों से अति ममता थी। स्काउट मास्टर का कार्य भी वे करते थे। उस समय स्काउट दल पढ़ाई लिखाई से निरासक्त, भटकने वाले और पेटू लड़कों का दल समझा जाता था। ड्रिल मास्टर ने सोचा कि यदि सत्या जैसा शीलवान लड़का स्काउट दल में प्रवेश कर ले तो दल के विषय में जनता की यह धारणा बदल जाएगी। सत्या की प्रामाणिकता में इतनी श्रद्धा थी संपूर्ण ग्राम की। बहुत दिनों तक सत्या ने उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, वह तटस्थ ही रहा। तब मास्टर साहब ने अपनी इस योजना में सत्या के दो मित्रों को भी मिला लिया। उन दोनों ने स्काउट दल की पोशाक गुप्त रीति से ले जाकर सत्या के डेस्क में रख दी। उनके इस स्नेह एवं आग्रह से सत्या का निर्णय ढीला पड़ गया। उसका अंतःकरण भी मान गया। सत्या ने दल में प्रवेश पा लिया। इन्हीं दिनों में प्रांत की सबसे बड़ी कही जाने वाली पुष्पगिरी यात्रा का समय आया। सेवा कार्य के लिए ड्रिल मास्टर को यह एक उत्तम अवसर प्रतीत हुआ। यात्रा में आने वाले यात्रियों के रहने की व्यवस्था करना, मंदिर के पास की भीड़ को नियंत्रित करना, राह भूले बच्चों को सांत्वना प्रदान कर उन्हें उनके माता पिता के पास पहुंचाना, स्नान घाट व मंदिर के पास किसी के आहत होने पर उसकी प्रारंभिक चिकित्सा करना आदि सत्कार्यों का सुअवसर मिलेगा, ऐसा कहकर मास्टर साहब ने बच्चों को उत्साहित किया। पुष्पगिरी जाने आने में बस प्रवास व्यय, कैंप व्यवस्था तथा खाने पीने के खर्च के लिए प्रत्येक बालक से 10 रुपए लाने के लिए कहा गया। सत्या की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मानव सेवा के लिए जब माधव स्वयं अवतार लेता है, तब यदि मानव ही मानव की सेवा में तल्लीन हो जाए तो कितना फलकारी होगा। इस तथ्य को स्पष्ट करने तथा निस्वार्थ सेवा में ही विशुद्ध आनंद की प्राप्ति है, यह अपने मित्रों से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सत्या ने पुष्पगिरी कैंप में जाने का निश्चय किया। लेकिन खर्चा, इनका निर्वाह कैसे होगा? सर, आप लोगों के साथ मेरा जाना संभव नहीं है। मैं बाद में निकलकर कैंप प्रारंभ होने के पूर्व आपके पास पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कह सत्या ने बस का खर्च बचाया, पैदल ही यात्रा करने का संकल्प किया। सर, मेरे बहुत से बंधु उस यात्रा में जा रहे हैं, अपने साथ रहकर खाने पीने का उन्होंने आग्रह किया है, मानने के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। कुछ भी हो, शिविर के नियमानुसार मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर खाने पीने का व्यय भी सत्या ने बचा लिया। उसने किसी भी प्रकार से समय काटने का संकल्प किया। सब ग्रामों से सर्वकाल सभी यात्राओं में आने वाले सब बाबा के बांधव ही तो हैं, किंतु किसी भी प्रकार समय काटने के लिए भी कुछ पैसे तो चाहिए ही। इसके लिए सत्या ने एक उपाय की योजना की। पिछले वर्ष की पाठ्य पुस्तकें एक लड़के को बेच दी। 12 रुपयों में वे पुस्तकें मुझे मिल जाएं तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा सोचने वाले उस बालक से केवल 5 रुपये लेकर ही सत्या ने वे किताबों का बंडल उसे सौंप दिया और हंसते हुए कहा, मुझे इस समय 5 रुपये की ही आवश्यकता है। 15-16 मील लंबा रास्ता, मानव देह, पुष्पगिरी के रेत के टीलों पर अपनी तौलिया बिछाकर और थैले का तकिया बनाकर सत्या सो गया। यात्रियों की उस भीड़ में वह थैली तथा उसका सामान किसी एक पुण्यवान के हाथ लग गया। बाबा कहते हैं, मैं जोर से हंस पड़ा, उन्हें क्रोध नहीं आया, न वे व्याकुल हुए। वहां 10 कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक पत्थर पर कोई एक बंडल बीड़ी और एक इकन्नी छोड़ गया है। वह सिक्का हाथ में लेकर सत्या यात्रा स्थान के मैदान में पहुंचा। वहां एक महानुभाव सत्या की सेवा के लिए बड़ी ठाट से बैठे हुए थे। उसके सामने बिछे काले कपड़े पर एक गोल भाग्य चक्र बना हुआ था, जिसके खाने पर सांकेतिक चिन्ह बने थे। उसके रखे हुए बर्तन में 1 पैसा फेंक उस कपड़े के बीच में लगी कील पर स्थित कांटे को जोर से घुमाना पड़ता था। वह जिस खाने के समक्ष स्थिर हो जाए उस खाने में अंकित सांकेतिक अंक से गुणा करके वह पैसे देता था। यदि 4 अंक हो तो 1 आना, 8 हो तो 2 आना, इस क्रम से 16 अंक तक अंकित थे। लेकिन सावधान, खाने में अंकित अर्ध या शून्य के संकेत के सामने कांटा रुक जाए तो आपके दिए हुए पैसे उसकी भेंट। सत्या ने उसके पास जाकर कांटा घुमाकर 12 आने बनाए। इतना ही यथेष्ट होगा कहकर वहां से चला गया। अन्याय से उसके पेट पर प्रहार करना मुझे उचित नहीं लगा। बाबा कहते हैं, 12 आने, 12 आने यथेष्ट थे आपको 1 सप्ताह के व्यय के लिए? मेरे इस प्रकार प्रश्न करने पर बाबा ने कहा, क्या मैं सदा नहीं कहता कि तुम्हारा संतोष ही मेरा आहार है? अब भी वही है, तब भी वही था और सदा यही नियम रहेगा। खाना खा चुके? इस प्रकार मास्टर साहब के पूछने पर उनके संदेह के निवारण के लिए सत्या अपना हाथ आगे बढ़ाया। सौंधी सुगंध पावे कहते, तुम्हारे बंधुओं द्वारा तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ही मिल रहा है, तुम पुण्यवान हो, रोज वही भोजन करो। यथेष्ट खाना मिल रहा है तुम्हें, तुम्हें क्या? कहते हुए मास्टर साहब सत्या को ही अधिक कार्य सौंप देते। वह पट्टा भी हंसते हंसते ही सब कार्य कर अपने साथियों के सम्मुख सेवा तत्व के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट कर देता। परोपकार कहना भूल है, सब उपकार हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि पर है ही नहीं, वह दूसरा हमसे अलग ही नहीं, वह ही हम हैं, नाम रूप भिन्न है, केवल इतना ही है, पर द्रोह अपने ही द्रोह के समान है, कहकर सहपाठियों को वह जागृत करते। स्काउट दल के कमरा पर लौटने के समय मास्टर साहब ने सत्या को भी अपने साथ लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बस वह ना देते हुए बस में आने की इच्छा ना होने से सत्या अपने साथियों में से किसी प्रकार अलग ही पैदल घर वापस लौटा। कमलापुर में अपने भाई के ससुराल में सत्या को दोनों समय भोजन मिल जाता था, यह तो ठीक है, किंतु अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए पैसे कहां से आते? कभी कभी कमीज में बटन ना होने पर और खरीदने के लिए पैसे भी ना होने पर वह किसी बेल से कांटा तोड़ उसे पिन के समान उपयोग में लाता। पैसा ना होने पर कभी कभी बाबा कोटे सुबन्ना की दुकान में चले जाते। श्री सुबन्ना औषधि तथा नए नए फैशन की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। उन दिनों प्रचार कला में पारंगत लोग बच्चों का एक समूह तैयार कर उनके हाथों में विज्ञापन की पताकाएं देकर गीत गवाते और इस प्रकार लोगों का कौतूहल जागृत कर अपनी वस्तुओं के विज्ञापन द्वारा धनकार्जन करते। सत्यनारायण के काव्य सामर्थ्य से परिचित सुबन्ना ने अपने पेटेंट औषधियों के प्रचार के लिए उससे कई गीतों की रचना करवाई। ऐसे कुछ गीतों की बाबा को आज भी याद है। इन प्रचार गीतों के पारिश्रमिक के रूप में पेन, पेंसिल, जूते, छतरी, कपड़े, कंबल, आईना आदि वस्तुएं सत्या को मिल जाते थे। सुबन्ना पुण्यवान ही कहा जाएगा। वे गीत केवल उन बच्चों की ही नहीं वरन संपूर्ण ग्राम की संपत्ति बन गए। कमलापुर निवासी आज भी अत्यंत अभिमान से कहा करते हैं, अपना निज स्वरूप बाबा ने सर्वप्रथम उर्वा कोंडा में ही प्रकट किया होगा, परंतु उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर उन्हें पूजने का गौरव हमारे ग्राम को ही प्राप्त है। सत्य साईं बाबा को छोटी आयु में ही जिस प्रकार कमलापुर में अभिनंदन प्राप्त हुआ, वैसा अन्य ग्रामों में नहीं हो पाया, क्योंकि कमलापुर की जनता निष्कपट हृदय से उन्हें साईं बाबा ही मानती थी। अब हमें भी शीघ्र ही उर्वा कोंडा की ओर प्रस्थान करना होगा। इस भागवत का अगला स्कंध वहीं से प्रारंभ होगा। पंडित की परीक्षा पास करने पर शेषम राजू को उर्वा कोंडा हाई स्कूल में नौकरी मिल गई। अपने छोटे भाई को SSLC तक पढ़ाने का सुअवसर देख हर्षित होकर शेषम राजू सत्या को साथ लेकर उर्वा कोंडा पधारे।
अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के तहत स्वामी के बाल्यकाल से जुड़ी कुछ एक घटनाओं का प्रसंग।